शांति ओम शांति। सर्वप्रथम सुनने वाले सर्व देवी भक्तों को, सर्व पूज्य माँ भक्तों को और सर्व माँ के बच्चों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नवरात्रि का त्योहार क्या आया, हर एक के दिल झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे और हर एक के हृदय में माँ देवी की स्मृति ताजी होने लगी। हर एक का हृदय माँ माँ कहकर और उस माँ को याद कर रहा है। प्रश्न ये उठता है कि ये कौन सी वो माँ है, ये कौन सी वह देवियाँ हैं, ये कौन सी वह शिव शक्तियाँ हैं, ये कौन सी वह नारियां हैं जिन्हें आज संसार के सर्व प्राणी माँ माँ कहकर गदगद होते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना उसको याद करते हैं, उसकी पूजा अर्चना आरती और विविध प्रकार के व्रत करते, नियम करते, तप करते, तपस्या करते और उस माँ को रिझाने के नाना प्रयत्न करते। ये कौन सी वह नारियां थी जिन नारियों ने अपना नाम स्वयं परमपिता परमात्मा शिव के साथ जोड़ दिया, क्योंकि इन सर्व देवियों को कहा जाता है शिव शक्तियां। ना सिर्फ उन्होंने प्रभु के नाम के साथ अपना नाम जोड़ा, लेकिन जैसे प्रभु को सभी याद करते और उनको पूजते हैं, ऐसे इन नारियों को भी शिव के साथ उनका नाम लेकर के शिव शक्ति के रूप में उनको पूजते हैं और याद करते हैं। ये कौन सी वह नारियां हैं जिन नारियों को सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कहा गया, ये कौन सी वह नारियां हैं जिनको असुर संहारिणी कहा गया, ये कौन सी वह नारियां हैं जो सर्व भक्तों की माँ बन करके और विश्व के सर्व प्राणियों की माँ बन करके ममता लुटाती है, अपनी गोद में, अपनी छत्र छाया में उन्हें सदा सुरक्षित रखती है। ये कौन सी वह नारियां हैं जिन्होंने गिरते हुए को संभाला, ये कौन सी वह नारियां हैं जिन्होंने डूबते हुओं को तारा, ये कौन सी वह नारियां हैं जिन्होंने अंधकार को मिटाकर सर्व को रोशनी में लाया, ये कौन सी वह नारियां हैं जिन्होंने प्रत्येक के जीवन को उज्जवल बनाया, पवित्र बनाया, श्रेष्ठ बनाया, ये कौन सी वह नारियां हैं जिनके उपकारों को पूरा जगत याद करता है, सर्व मनुष्य प्राणी याद करते हैं और उनके उपकारों को उतारने के लिए उनके उपकारों के बदले में जो भी वह नारियां कहे वह करने के लिए वो तत्पर हैं। वो कौन सी वह नारियां हैं जिन पर बलिहार जाने को मन करता है? ये कौन सी वह नारियां हैं जो प्रत्येक मंदिरों के अंदर प्रभु की तरह प्रस्थापित की गई हैं? और इस नवरात्रि के त्योहार में तो पूरे 9-10 दिन इन देवियों का, इन माँ का और इन नारियों का गायन, पूजन, अर्चन, आरती, वंदन आदि आदि बड़ी धामधूम से करते हैं और अभी करेंगे और सदैव ही करते रहेंगे। तो हम देखें ये वह नारियां जिन नारियों के त्याग और तप के बल से इस नवरात्रि को नव के साथ जोड़ा गया है, अर्थात नव माना नवीन। नव का अर्थ नया भी होता है। तो इन देवियों ने, इन शक्तियों ने क्या नया किया, क्या नवीन किया जो इन देवियों को नवरात्रि के अंदर विशेष रूप से याद किया जाता है? या फिर यूं कहें कि यह रात्रि शब्द कौन सी नवीनता लेकर के आया, कौन सी नई बात लेकर के आया, कौन सा नया सुवर्ण प्रभात लेकर के आया जो नवरात्रि के नाम से इन देवियों को याद करते हैं? और ये रात्रि का इन देवियों के साथ क्या संबंध है? रात्रि का इन शिव शक्तियों के साथ क्या संबंध है? इन नारियों का इस रात्रि के साथ क्या संबंध है? तो आप सब भी जानते हैं कि रात्रि अंधकार का सूचक है और अज्ञान को भी अंधकार कहा जाता है। जितनी भी संसार के अंदर नेगेटिविटी है, चाहे वो ज्ञान की, चाहे गुण की, चाहे शक्ति की, चाहे समय की, चाहे वातावरण की, चाहे व्यक्तियों की, चाहे संबंधों की, चाहे तो संसार के प्रत्येक व्यवहार की जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको भी रात्रि के अंधकार के सूचक माना जाता है। तो इन नारियों ने ऐसे अज्ञान के अंधकार को, ऐसी नकारात्मकता को अपने त्याग, तप और शक्ति के बल से नष्ट किया, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के अंदर ये नेगेटिविटी है वो सारे के सारे अपने कर्म करने पर जब आते हैं तो उस नकारात्मक वृत्ति के वश होकर के जब कर्म करते हैं तो वो कर्म से असुर बन जाते हैं, अर्थात आसुरी वृत्ति वाले राक्षस बन जाते हैं। और ये देवियां, नारियां, शक्तियां विशेष ऐसे असुरों का नाश करने के लिए ही प्रख्यात हैं। और हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं कि संसार के अंदर वर्तमान समय नेगेटिविटी के कारण नकारात्मक वृत्तियों के वशीभूत कितना भ्रष्टाचार है, कितना पापाचार है, कितना दुराचार है, कितना अत्याचार है और कितनी बेबस और मजबूर नारियों की लाज लूटकर उन पर बलात्कार कर उनको बेइज्जत भी किया जाता है। तो ये सारे आसुरी वृत्ति वाले जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सभी का नाश कौन करे? अब एक दो व्यक्ति हो तब तो उस एक दो व्यक्ति के लिए विशेष देवी का आवाहन कर उसका नाश किया जा सके, लेकिन यहाँ पर तो आज जगत में देख रहे हैं कि घर घर के अंदर ऐसे असुर बैठे हुए हैं, चाहे कंस के रूप में, चाहे रावण के रूप में, जरासंध के रूप में, शिशुपाल के रूप में, और फिर इन देवियों के साथ जो भी असुरों की गाथाएं हैं, उन गाथाओं के जो भी नाम इन देवियों के साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी का विनाश जो है, नाश जो है, इन देवियों ने किया। परंतु कैसे किया? तो दिखाते हैं इन देवियों ने अपने अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर चलाए। अब देवियों के पास अस्त्र शस्त्र कहाँ से आए? एक तरफ तो इन देवियों को हम कहते हैं मां स्वरूपा, दयालु, कृपालु, ममता की देवियां, और ऐसी ममता की मूरत शीतल माताओं के हाथ में, देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र भी उतने ही भारी भरकम दिखाए जाते हैं। तो ये सारे अस्त्र शस्त्र देवियों को किसने दिए? देवियों ने कहां से लाए? अवश्य इन देवियों को इन अस्त्र शस्त्रों को देने वाले कोई तो ऐसा इष्ट होगा जो कि असुरों को संहार कर और उनके ऊपर विजय प्राप्त कराने की क्षमता शक्तियां इन नारियों के अंदर भरी। वो कौन हो सकता है? तो देवियों के नाम के साथ ही उसका परिचय भी हम सर्व को मिलता है। इन देवियों को कहा जाता है शिव शक्ति, अर्थात ये वह नारियां हैं जिन्होंने शिव के साथ अपना संबंध जोड़ा, अपना संबंध बांधा। वैसे तो संसार के अंदर यह भी एक देखा जाए तो एक अत्याचार ही है, चाहे पति शराबी हो, व्यसनी हो, अवगुणी हो, या फिर किसी भी आसुरी वृत्ति वाला हो, फिर भी उस नारी को जब शादी करती है तो कहा जाता है कि अब से पति ही तेरा परमेश्वर है और परमेश्वर के गुण उसमें कोई पाए नहीं जाते। परंतु नारी है कि सब कुछ सहन करके और ऐसे अवगुणी आसुरी वृत्ति वाले उस पति के अंदर परमेश्वर की भावना रखते हुए दयालु, कृपालु, करुणा मूरत बनकर, माँ बनकर और ऐसे पतियों की वह परवरिश करती है, संबंध जोड़ के चलती है, संबंध निभा के चलती है और उनकी भी रक्षा करती चलती है और उनको भी सर्वप्रथम महत्व देती है। परंतु यह जो देवियां गाई गई हैं, पूजी गई हैं, यह तो वह नारियां हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल में परमेश्वर को अपना पति माना, पति बनाया, पति समझा, अपना स्वामी बनाया और उनसे उन्होंने शक्ति ली। और सही अर्थ में पति परमेश्वर कैसे हैं और पति परमेश्वर है, यह बात सिद्ध करके दिखाई। स्वयं शिव की पत्नियां बनी, शिव की शक्तियां बनी, शिव से शक्ति लेकर, बल लेकर, ताकत लेकर के और शिव की वो पत्नियां कहलाई, शक्तियां कहलाई, और उन शक्तियों के आधार पर जो भी उनके द्वार पर आया, जिन्होंने भी उनसे सहयोग मांगा, मदद मांगी, जो भी आसुरी वृत्ति वाले उनके द्वार पर आए, उन सभी का उन्होंने नाश किया, संहार किया, उनको मदद की और उनको सुख पहुंचाया, शांति पहुंचाई, उन्होंने शक्ति भरी और उनके ऐसे अवगुणों का नाश कर उन्हें गुणवान बनाया। डूबते हुए को उन्होंने तारा, हरेक को उन्होंने माँ बन करके, जैसे कहते हैं पूत कपूत भयो, परंतु माता कभी भी कुमाता नहीं होती, ऐसे ये नारियों ने भी हमेशा अपने जो भी इस संसार के मनुष्य प्राणी हैं, उनको बच्चों की तरह यदि उनके द्वार पर आए, उनकी शरण में आए या उनकी गोद में आए, तो उनको बच्चों की तरह, अपने पुत्र की तरह गले लगाया, बच्चे की तरह, बालक की तरह उनको स्वीकार किया और उन सभी बच्चों की, बालक की या भक्तों की, उनकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी उनकी इच्छाएं, जो भी उनकी आशाएं, वो सभी उन्होंने उनकी पूर्ण की। तब जाकर के यह नारियां इतनी गायन योग्य बनी, तब ये नारियां पूजनीय बनी, तब ये नारियां शिव शक्ति कहलाई, क्योंकि पति परमेश्वर जो सदा कल्याणकारी है, सर्वशक्तिमान है, उनसे सर्वशक्तियां संबंध शिव से जोड़कर उन्होंने प्राप्त की और उन सर्वशक्तियों के आधार पर उन्होंने इस विश्व के अंदर जो अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था, उसे उन्होंने नष्ट किया, उस अज्ञान के अंधकार को मिटाकर और इस जगत में उजाला किया, अर्थात सर्व को रोशनी में लाया, सर्व के बुझे हुए दीपक को जगाया, अर्थात उनको दिव्य बुद्धि अर्पण की, जो दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य दृष्टि विधाता, स्वयं परमपिता परमात्मा ने उनको अर्पित की। इसीलिए यह देवियां भाग्य विधाता भी कहलाई, क्योंकि परमात्मा ने इन कमजोर, अनाथ, दुखी, मजबूर, निर्बल ऐसी नारियों को अपनी बना करके, उनमें शक्तियां भर करके और उनको अर्धनारीश्वर, यह जो प्रभु का स्वरूप गाया जाता है, तो प्रभु ने उनको अपना पार्टनर बनाया, अर्थात प्रभु ने नए विश्व की स्थापना के कर्तव्य में उनको अपना साथी बनाया, अपनी अर्धांगिनी बनाई, और यह अर्धनारीश्वर, यह नारी शिव शक्ति बनी, देवी बनी, पूजनीय बनी और उसने सर्व के भाग्य को जगाया। अब यह नारियां अनेक नामों से जगत में गाई जाती हैं, पूजी जाती हैं, और हरेक यह पूजनीय नारी को भिन्न भिन्न देवी के नाम से जानते हैं, मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनको नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से याद भी करते हैं, जैसे माँ अम्बा, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती आदि 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 अनेका अनेक नामों से यह देवियां प्रचलित हुई हैं, अनेक नामों से इनका गायन पूजन है। इतना ही नहीं, लेकिन हमारे सर्व शास्त्रों के अंदर, चाहे वेद हो, पुराण हो या कोई भी शास्त्र हो, हरेक शास्त्रों ने उनकी खूब महिमा की है, इतनी महिमा जो उनकी महिमा को जब लिख नहीं पाते तो फिर कहा जाता है कि महिमा अपरम अपार है, क्योंकि उनके जो दाता हैं, उनके जो पति हैं, उनके जो स्वामी हैं, वो कौन है? वो भी जिसकी महिमा नहीं लिखी जाती, स्वयं सरस्वती भी जिसकी महिमा लिखने में असमर्थ है, ऐसे वह सदा कल्याणकारी ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव की वह नारियां हैं, वह बच्चियां हैं, वह शक्तियां हैं, और शिव ने ही इनको ऐसा योग्य बनाया, शिव ने ही उनको इतने ऊंच स्थान पर प्रस्थापित किया, और आज वही नारियां शिव शक्ति और देवियों के रूप में जगत के अंदर भिन्न भिन्न नाम रूप से और भिन्न भिन्न मंदिरों के अंदर प्रस्थापित की गई हैं, और आज नवरात्रि के यह 9-10 दिन खूब सभी अपनी इस देवी माँ को याद करेंगे और उनसे शक्ति लेंगे। परंतु याद रहे कि हम ये नवरात्रि को कैसे मनाएंगे, इस नवरात्रि को हम सिर्फ रास गरबा खेल कर नहीं मनाएंगे, सिर्फ हम कोई कलश लेकर जिस कलश में छेद होते हैं उसके अंदर एक दीपक रख करके, या हम सिर्फ आरती उतार कर और हम उसकी नवरात्रि नहीं मनाएंगे। परंतु जैसी हमारी इस पूजनीय देवी माँ के अंदर गुण हैं, उनके अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार की सर्व शक्तियां हैं, जैसे उन्होंने अपना संबंध, अरे सारे संबंध, अपना पूरा संसार अपने परमेश्वर को अपना पति बनाया, ऐसे हम उस पिता परमात्मा के साथ अपने सर्व संबंध जोड़ेंगे, उनसे हम भी उनकी तरह शक्ति भरेंगे, शक्ति लेंगे, और शक्ति लेकर के इन 10 दिनों के अंदर अपने अंदर छिपे हुए जो भी रावण हैं, कंस हैं, शिशुपाल हैं, या जो भी असुर हैं, सारे असुरों का हम नाश करेंगे, चाहे वो शुंभ हो, निशुंभ हो, अरे अनेक असुरों के नाम हैं, नाम लेते ही चले जाओ, नाम खूटेंगे नहीं, इतने सारे बेहद असुर हैं, तो इन सारे असुरों का हमें संहार करना है, और ये सारे असुर हमारे स्वभाव में आकर के, हमारी प्रकृति में आकर के बैठे हुए हैं, और वो पल पल हमें दुखी कर रहे हैं, अशांत कर रहे हैं, घर घर में लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं, घर घर के अंदर खून खराबा हो रहा है, घर घर के अंदर प्रत्येक नारी रो रही है, प्रत्येक नर रो रहा है, प्रत्येक प्रभु का बच्चा रो रहा है। तो हमें उस देवी माँ को याद करते हुए, उनके गुणों को याद करते हुए उनसे शक्ति लेनी है, अपने में स्वयं में गुण भरने हैं, और उन गुणों की प्रतिज्ञा करनी है, उन गुणों के लिए नियम बनाने हैं, उन गुणों के लिए हमें वायदे करने हैं कि हम अपने इन सभी अवगुणों को मिटाएंगे, नकारात्मकता को हम मिटाएंगे, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करेंगे, और माँ देवी की तरह हम अपनी ज्ञान की ज्योति जगाएंगे, न सिर्फ हम अपनी जगाएंगे लेकिन इस विश्व रूपी कलश में या मटके में जितने भी छेद दिखाई पड़ते हैं, उतने देश और विदेश, हम प्रत्येक देश और विदेश के प्रत्येक शहरों में, गांव में प्रत्येक नर नारी को यह ज्ञान का, रोशनी का संदेश देंगे, और हरेक यह प्रेरणा लेंगे कि हम स्वयं को ऐसा गुणवान बनाएं और नकारात्मकता को खत्म करें, और पूरे जगत के अंदर हम ऐसी रोशनी फैलाएं जो सभी खुशी में आकर सभी आनंद से उमंग से उल्लास से क्या करे, सभी रास करे, सभी गरबा करे, सभी गीत गाए, सभी नाचे, सभी अपने उस परम पिता परमात्मा को शुक्रिया कहे, इन देवियों की शुक्रिया करे और इन देवियों को याद करे। बस यही सच्चा सच्चा नवरात्रि मनाना कहा जाएगा। तो नारियों की यह महिमा जो कि आज आप लोगों ने सभी ने सुनी, तो अभी फिर से वह समय रिपीट हो रहा है, वह समय फिर से अभी चल रहा है, और इसीलिए आप भी इस अज्ञान के अंधकार से स्वयं को रोशनी में लाने के लिए परमपिता परमात्मा शिव को यथार्थ रीति से जाने पहचाने और स्वयं को उसकी शक्ति बनाकर और शिव शक्ति बनकर और सही अर्थ में सच्चे अर्थ में जो नारियों के लिए नवरात्रि मनाई जाती है वो मनाने का हक और अधिकार स्वयं भी प्राप्त करें और सर्व को यह हक दिलाने का और सौभाग्य उनका सदैव जगाकर रहे, सभी को सौभाग्यशाली बनाए। ओम शांति, ओम शांति।